और घुमट सात जीव कांड के अंदर आइएगा, काल मार्गणा का की अंतिम गाथा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का वर्णन करने का लक्ष्य बनाकर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने गोमट सार जीवकांड नाम के ग्रंथ की रचना की और उसी के सार रूप में जो आप पढ़ रहे हैं, आप 8वीं प्ररूपणा के अंदर यानी 8वीं अध्याय में आपने प्रवेश किया है, जो काय मार्गणा। तो काय मार्गणा में गाथा नंबर 59 से लेकर के 70 नंबर की गाथा तक आपने स्थावर काय, तरस काय, इनके भेदों को जाना, वनस्पति के भेदों को विशेष रूप से जाना। अब आगे कहते हैं कि काय मार्गणा से रहित जो सिद्ध होते हैं, अकाय यानी काय रहित कौन होते हैं? सिद्ध भगवान, जो पूरी तरह से शरीर से रहित हो जाते हैं क्योंकि 8 कर्म उनके नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप को कहते हैं। जह कंचन मग्गि गयम,
जह कंचन मग्गि गयम
मुंचई किट्टेन कालियाया,
मुंचई किट्टेन कालियाया
तह काय बंध मुक्का,
तह काय बंध मुक्का
अकाया झाण जोगेण,
अकाया झाण जोगेण।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा। जह कंचन मग्गि गयम मुंचई किट्टेन कालियाया, तह काय बंध मुक्का अकाया झाण जोगेण। यथा कंचन मग्निगतम मुच्यते किट्टेन कालिकया च, तथा काय बंध मुक्ता अकायिका ध्यान योगेन। यानी ध्यान के योग से, ध्यान के बल से जिन्होंने कंचन मग्गि गयम अर्थात सुवर्ण जैसे अग्नि के द्वारा तपाया जाता है, सुसंस्कृत किया जाता है, संस्कारित किया जाता है, तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के मल से रहित होकर वह शुद्ध सोने के रूप में निखर करके आता है। उसी प्रकार से तह काय बंध मुक्ता, यथा तथा काय बंध मुक्ता, उसी प्रकार से झाण जोगेण ध्यान की अग्नि में तप करके ध्यान के योग से जीव यानी सयोग केवली भगवान तेरहवें गुण स्थान में, पुनः वे अयोग केवली होते हैं तो अंतर मुहूर्त मात्र में शुक्ल ध्यान, परम शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा काय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी शरीर से भी मुक्त हो जाते हैं और अष्ट कर्म के बंधन से भी पूरी तरह से मुक्त होकर के और सिद्ध भगवान के रूप में सिद्ध शिला पर प्रकट हो जाते हैं। तो काय मार्गणा के अंदर, काय प्ररूपणा के अंदर षट कायों का वर्णन करने के बाद ये बताना भी आवश्यक है कि कौन काय से रहित होते हैं। तो काय से रहित कौन हुए? सिद्ध भगवान, सयोग केवली भगवान, अरहंत भगवान जो हैं वे काय से सहित रहते हैं क्योंकि उनके 4 कर्म नष्ट हुए हैं और वे जब तक समोसरण में रहते हैं तो अपने परमोदारिक शरीर के द्वारा समोसरण में चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में विराजमान होकर सबको दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं। पुनः जब आयु का अंत आता है तब वे अघात्या कर्मों का भी नाश करके और क्षण मात्र में, अंतर मुहूर्त मात्र में सिद्ध बन जाते हैं कर्म का नाश होने से। तो जैसे अग्नि से सोना तपा तो शुद्ध हो गया, ध्यान को अग्नि की उपमा दी है, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा वे भगवान अपने कर्म को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। तो जब जल गया बीज तो जला हुआ बीज कभी तो पुनः उगता नहीं, इसी प्रकार से जो कर्म जल गए तो वे कभी उगते नहीं अर्थात पुनः संसार का बंध नहीं कराते हैं, इसलिए अनंत काल के लिए वे सिद्ध भगवान विग्रह रहित होकर, काय से रहित होकर, अशरीरी बनकर अमूर्तिक बनकर सिद्ध शिला पर केवल शरीर प्रमाण आत्मा की प्रदेश वहां पर उनके विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से आपकी ये काय मार्गणा पूर्ण हुई है, यानी 71 गाथाएं परिपूर्ण हुई हैं और आपको 87 गाथा तक वेद मार्गणा तक आपको परीक्षा देनी है। तो अब हम आगे योग मार्गणा और वेद मार्गणा में कल से आगे बढ़ेंगे। अंत में केवल काय मार्गणा को समाप्त करते हुए इतना ही जानना है कि यद्यपि ये काय सभी संसारी जीवों का शरीर, ये मल का बीज है, यानी इसके अंदर नौ द्वार बहे घिनकारी कहे हैं, सप्त धातु में रहती हैं, नौ स्थानों से मल झड़ता रहता है, ये मल का स्थान है, लेकिन फिर भी अत्यंत निंद होते हुए भी, कृतघ्न होते हुए भी इसी काय के द्वारा रत्नत्रय रूपी निधि प्राप्त की जा सकती है। और इस देह रहित अवस्था को भी कौन प्राप्त करते हैं? मनुष्य ही प्राप्त करते हैं। चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही ऐसी है कि जिसके द्वारा सिद्ध पद को या शरीर रहित अवस्था को, अशरीरी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस काय को संयम रूपी भूमि में वो करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसा आचार्य देव बार बार प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि इसमें स्वर्गादिक के सुख जो हैं, वैभव हैं, अभ्युदय हैं, ये भूसे के समान स्वयं ही मिल जाते हैं। लक्ष्य अपना फल पाने का है। किसान फल पाने के लिए खेती करता है, फल की प्राप्ति होती है तो बीच में भूसा तो अपने आप मिल ही जाता है। इसी प्रकार से मोक्ष के फल को पाने की इच्छा से दीक्षा धारण की जाती है, तपस्या किया जाता है, उसके बीच में स्वर्ग के सुख, मनुष्य गति के सुख भूसे के समान स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि संयम के बिना अपने को एक क्षण भी व्यतीत नहीं करना है। मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इसे प्राप्त करके हमेशा अपना परम लक्ष्य सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई भारवाही पुरुष कावड़ी के द्वारा भार को ढोता है। पहले एक समय था जब किसी भी भार को इधर से उधर ले जाना होता था तो कावड़ लेकर के और उसको ढोया जाता था अपने कंधों से। अब तो गाड़ियां चल गई, लेकिन फिर भी भार ले जाने के लिए किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। उसी प्रकार से ये जीव अपने शरीर रूपी कावड़ी के द्वारा, शरीर रूपी गाड़ी के द्वारा कर्म के भार को अनादि काल से ढो रहा है। ऐसे कर्म के भार को ढोते हुए अब अनंत काल व्यतीत नहीं करना है। इसलिए महानुभाव अपन सबको हमारे 2400 तीर्थंकर भगवान के जीवन चरित्र को जान करके कि उन्होंने भी अंत में ध्यान करके और मोक्ष धाम को प्राप्त किया, ऐसे भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि से आप प्रतिदिन ज्ञान की बातें श्रवण करते हैं, भक्ति गंगा में स्नान करते हैं, तो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी जो वर्तमान में सरस्वती की प्रतिकृति मानी जाती हैं, वे प्रतिदिन अपने प्रवचनों के माध्यम से आपको मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करना बताती हैं। आजकल बहुत ही सुंदर प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का स्वाध्याय करा रही हैं। आप सब लोग प्रातःकाल 6 बजे से पारस चैनल में जुड़ करके और उसका भी स्वाध्याय करें, उसकी भी परीक्षा होगी। और ध्यान रखें 28 फरवरी को आपकी परीक्षा गोमठ सार जीव कांड की आगे की द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में परीक्षा होने वाली है। जब आपके पास पेपर पहुंचेगा, माने जूम चैनल से वो पेपर डिस्प्ले किया जाएगा और आप सब लोग उसका उत्तर भर करके और परीक्षा में अवश्य ही उत्तीर्णता प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आप बराबर स्वाध्याय करते रहिए और थोड़े से अध्ययन के बाद संस्कृत व्याकरण की परीक्षा की तारीख भी हम घोषित करेंगे।